A different future starts with you. That's why GoDaddy does more than help you find a name. You can create, sell, and get found online, so any small business could be a driving force to create change or build an empire. We know old ideas aren't cutting it anymore, so we're calling for a new generation of thinking, your way of thinking. So whatever you have in mind that will help make a different future, find everything you need to get started at GoDaddy.com. Because the future isn't decided yet. It's up to us to make it happen. Start different at GoDaddy.com.
HD Smartcast.
You are listening to an HD Smartcast original.
आइए मैं राणा सफी आपको ले चलती हूँ इतिहास की अनदेखी गलियों में मेरे पॉडकास्ट अनजाने रास्ते के जरिए। आज सैर करने चलते हैं मध्य प्रदेश के खजुराहो। यहाँ पे बहुत ही सुंदर मंदिरों की श्रृंखला बनी है जो 10वीं सदी से लेके 12वीं सदी तक में चंडेला राज्य में या तो उनके राजाओं के प्रति या उनके जो मर्चेंट्स थे उनके यहाँ जो अमीर उमरा थे चीफ्स थे उन्होंने बनवाई है। ये मंदिर बहुत ही सुंदर है लेकिन 13वीं सदी से ये मंदिर कहीं ना कहीं खो गए गुमनामी में, इनके बारे में लोग भूल गए। यहाँ पर 85 मंदिर बनवाए गए थे जिनमें से अब हमको 25 मिलते हैं, बाकी सब वक्त की नज़र हो गए। इन मंदिरों के बारे में जो मोरक्को से ट्रैवलर आए थे इब्ने बतूता बहुत मशहूर हैं, आपने उनका नाम सुना होगा, उन्होंने अपनी किताब में इसका जिक्र किया है लेकिन उसके बाद कोई हमें इसका जिक्र नहीं मिलता। फिर 1838 में T.S. बर्ट जो एक ब्रिटिश इंजीनियर थे उन्होंने सुना कि इस इलाके में बहुत खूबसूरत मंदिर हुआ करते थे, तो उन्होंने अपने पालकी वाला से कहा कि चलो भाई हम लोग ढूंढते हैं, और वो जंगल में इसको ढूंढने निकले। और वहाँ पे उनको उन पेड़ों में और जंगल जो वहाँ पे जंगलात हो चुका था जब तक के पेड़ पौधे सब उग चुके थे उसके अंदर उनको 7 मंदिर मिले। उन्होंने देखा कि ये मंदिर में बहुत ही खूबसूरत नक्काशी की हुई है। उसके बाद फिर वहाँ पे सफाई हुई और ये मंदिर फिर से उसी तरह हमारे लिए मौजूद हैं जैसे कि कभी रहा करते थे। कहते हैं कि इस जगह का नाम था खजूर वाहिका, मतलब खजूर के पेड़ से ताल्लुक रखता था। और यहाँ के ऊपर 2 बहुत ही खूबसूरत गोल्डन डेट पाम थे। ये जो 2 गोल्डन डेट पाम्स जहाँ से हम दाखिल होते हैं वहाँ पे स्थित थे और उन्हीं की वजह से इसका नाम पड़ा। ये मंदिर जो थे इनको 250 साल के वक्फे में बनाया गया। हम जाते हैं 2.5 घंटे में 2.5 दिन में देख के आ जाते हैं, लेकिन उन श्रद्धालुओं का सोचो, उन कारीगरों का सोचो जिन्होंने पूरी श्रद्धा और लगन से इन मंदिरों को बनाया। इनका जिक्र ना ही सिर्फ इब्ने बतूता करते हैं लेकिन उससे पहले ह्वेनसांग जो चाइनीज ट्रैवलर थे उन्होंने भी किया है और अलबरूनी ने भी किया है अपनी किताब हिंद में। जब दिल्ली सल्तनत स्थापित हो गई तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने चंडेला राजा को हराया और अपना राज्य वहाँ पर स्थापित किया। और उसके बाद ये मंदिर जो थे ये कुछ खो से गए। यहाँ पे पूजा तो शायद होती होगी या नहीं होती होगी मुझे नहीं मालूम, क्योंकि हमको फिर इसका जिक्र मिलता है 1838 में जब ये T.S. बर्ट इनको ढूंढ निकालते हैं। आजकल यहाँ पूजा नहीं होती लेकिन ये पूजनीय है। खुद इनकी जो आर्किटेक्चर है वो ही बेहद पूजनीय है और हमारे हिंदुस्तानी तारीख और विरासत का एक बहुत ही खूबसूरत नमूना है। जैसे कि मैंने पहले अर्ज किया यहाँ पे 85 मंदिर थे जिसमें से अब तकरीबन 25 बचे हैं। इनको 3 ग्रुप्स में तकसीम कर दिया गया है, वेस्टर्न, ईस्टर्न और सदर्न। यहाँ पे कुछ जैन मंदिर हैं जो वहाँ के जैन ताजरों ने बनाए और कुछ मंदिर हैं जो लॉर्ड विष्णु और लॉर्ड शिवा को समर्पित हैं। एक बात यहाँ मैं आपसे और करती चलूं, हिंदुस्तान में जो मंदिर हैं उनको दो ब्रॉड कैटेगरीज में हम तकसीम करते हैं। एक तो साउथ इंडियन आर्किटेक्चर जिसको द्रविड स्टाइल कहा जाता है, और एक नॉर्थ इंडियन टेंपल आर्किटेक्चर जिसको नागर स्टाइल कहा जाता है। नागर स्टाइल के जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ये हैं कि एक चबूतरा होता है, प्लिंथ होता है, उसके ऊपर मंडप होगा, एक वेस्टिब्यूल होगा, और उसके बाद गर्भगृह होगा। गर्भगृह के ऊपर शिखर होगा और चारों तरफ नीचे एक परिक्रमा करने के लिए भी पथ बनाया गया होगा। शिखर के ऊपर एक से एक खूबसूरत नक्काशी आपको मिलेगी, मूर्तियां बनी हुई मिलेंगी हर मंदिर में, वो छोटी होए चाहे बड़ी होए, उस जमाने की जितने मंदिर हैं उनमें सब में आपको मिलेंगी, और वही आपको खजुराहो में भी देखने को मिलता है। यहाँ के ज्यादातर मंदिर जो हैं वो ईस्ट फेसिंग है ताकि सूरज की पहली किरणें जो हैं वो आके समर्पित हो जाएं भगवान के चरणों पर। ये नागर स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर चंडेला राज्यकाल में अपने उरूज पर पहुंचा। हर हिस्सा जो था इसका बिल्कुल अलग था, और शिखर बनने शुरू हुए हर हिस्से के ऊपर, और उनकी ऊंचाई जो थी वो एक हिसाब से बनाई गई थी। सबसे ऊंचा जो होता था शिखर वो गर्भगृह के ऊपर हुआ करता था। खजुराहो में कोई भी मंदिर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन उसकी खूबसूरती ऐसी है कि वो सबकी आंखों में उसको बड़ा कर देती है। चलिए, सब सैलानियों की तरह, टूरिस्ट की तरह, हम भी वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेंपल से ही शुरू करते हैं। ASI ने, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, इसके चारों तरफ फेक रेलिंग बना दी है, और ये जो सारे मंदिर हैं वो एक ही इंक्लोजर में मौजूद है। सबसे पहले चलते हैं देवी मंदिर। ये मंदिर पहले गरुड़ा, जो लॉर्ड विष्णु का वाहन है, उसको समर्पित था, लेकिन आजकल यहाँ पे ब्राह्मणी देवी की मूर्ति मिलती है, और ये जो है ये लक्ष्मण टेम्पल के ठीक सामने है। अच्छा, यहाँ के ऊपर इसके पास एक ऐसा वराहा टेम्पल है कि इतना खूबसूरत वराहा मैंने नहीं देखा, और मैंने बहुत मंदिर विजिट किए हैं, बहुत मंदिरों में मैं गई हूँ, और वहाँ का मैंने आर्किटेक्चर और स्कल्पचर स्टडी किया है। वराहा, जैसे आपको मालूम है, लॉर्ड विष्णु का अवतार है, और इस वराहा के ऊपर 600 कार्विंग्स हैं जो रोज में बनाई गई हैं, और ये एक खुले पवेलियन में है, और इसके ऊपर एक शिखर है। ये एक सिंगल येलो सैंडस्टोन से बना हुआ है। इसके ऊपर जो नक्काशी की गई है, जो मूर्तियां बनी हैं, उसमें गणेश जी, लॉर्ड विष्णु के अलग अलग अवतार और बहुत से और देवी देवताओं की मूर्तियां बनी हुई हैं। ये 950 AD के आसपास किंग यशोवर्मन ने बनाया था, जब उन्होंने प्रतिहारा राजाओं के खिलाफ जंग जीती थी। कहते हैं कि यहाँ भूदेवी की भी एक मूर्ति थी, लेकिन अब वो नहीं मौजूद है। इसके पास है लक्ष्मण मंदिर। ये यहाँ का सबसे खूबसूरत मंदिरों में से है, और इसके ऊपर बहुत ही बारीक और नफीस नक्काशी की हुई है इसकी दीवारों के ऊपर। ये लॉर्ड विष्णु के वैकुंठ अवतार को समर्पित है, और इसके चारों तरफ जो पैनल्स बने हुए हैं, स्कल्पचरल पेंस जो हैं, अच्छा, यहाँ ये एक इकलौता मंदिर है खजुराहो का जिसमें बाहर के स्कल्पचरल पेंस जो हैं, यानी के जो पट्टियाँ हैं जिनके ऊपर मूर्तियाँ बनी हुई हैं, वो सारे वैसे के वैसे ही इंटैक्ट हैं। इसमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी दिखाई गई है, शहाना लाइफस्टाइल दिखाया गया है। इसको देख के हमको उस ज़माने की किस तरह से जिंदगी होती थी एक एहसास हो जाता है। इसके बाद हम लोग गए कंडरिया महादेव मंदिर। इस मंदिर को नाम मिलता है कंडार से, यानी कि गुफा केव, और ये यहाँ का सबसे ऊंचा और बुलंद मंदिर है। ये राजा विद्याधर ने 1030 AD में, कहते हैं, बनाया था, जब उन्होंने महमूद गजनी को हराया था। यहाँ के जो ताक हैं उसमें लॉर्ड शिवा के अनेक रूप हमको मिलते हैं, और जो सबसे ऊंचा यहाँ का शिखर है उसके अंदर हमको शिवलिंग मिलता है। अलेक्जेंडर कनिंगहम, जिन्होंने ASI स्थापित किया, उन्होंने 1861 में इस मंदिर की स्टडी की थी और उन्होंने 646 फिगर्स गिने थे इसकी बाहर की दीवार पर और 226 अंदर की दीवारों पर। सोचिए कितना वक्त लगा होगा और कितनी मेहनत। आगे जैसे हम बढ़ते हैं तो हमको जो और मंदिर मिलते हैं वो महादेव है, जगदम्बा टेम्पल है, चित्रगुप्त टेम्पल है। अच्छा, चित्रगुप्त टेम्पल जो है वो लॉर्ड सूर्य यानी के सूर्य भगवान को समर्पित है और इसमें अंदर एक बहुत ही शानदार सूर्यदेव की मूर्ति या प्रतिमा है। सूर्यदेव की एक बहुत ही सुंदर प्रतिमा है जो अपने रथ पे विराजमान है और उसको सात घोड़े खींच रहे हैं। यहाँ पे एक पार्वती मंदिर भी है, एक विश्वनाथ मंदिर है जिसको मराकटेश्वर मंदिर भी कहते हैं और कहते हैं कि यहाँ के ऊपर एक एमरल्ड शिवलिंग था। अब तो वो है नहीं मौजूद, शायद इतने सालों में किसी न किसी लुटेरे ने लूट लिया होगा उस मंदिर को और उस खूबसूरत शिवलिंग को। ये मंदिर कहते हैं कि 999 AD में बना था और इसके ऊपर एक हमें इंस्क्रिप्शन मिलता है जिसमें जो आर्किटेक्ट है उसका नाम भी मिलता है, उसका नाम था सूत्रधर चीचा और उसी में लिखा है कि यहाँ पे दो शिवलिंग थे, एक एमरल्ड का बना हुआ था, एमरल्ड तो आप जानते हैं जमुरद जो एक प्रेशियस स्टोन होता है, और एक पत्थर का था। वैसे तो आपको खुद ही ये मंदिर घूमने पड़ेंगे इसकी खूबसूरती देखने के लिए, इसमें जो रोजमर्रा की जिंदगी दर्शाई गई है उसको देखने के लिए, जो खूबसूरती जो मोहब्बत के पैगाम इस पे दिए गए हैं उसको देखने के लिए, लेकिन मैं आपको जल्दी जल्दी एक सैर करा देती हूँ। ईस्टर्न ग्रुप में एक बहुत ही बड़ा हनुमान मंदिर है जिसके इंस्क्रिप्शन के हिसाब से ये 922 AD में बना था। ये यहाँ का सबसे पुराना इंस्क्रिप्शन है। बहुत ही बड़ी यहाँ के ऊपर हनुमान जी की मूर्ति है और उसकी दीवारें सफेद, अंदर में मूर्ति लाल, एक अजब सा एहसास होता है जब आप वहां पहुंचते हैं। अच्छा, इस मंदिर में आज भी पूजा होती है और आपको काफी श्रद्धालु वहां मिलेंगे। एक ब्रह्मा टेम्पल है जो खजूर सागर टैंक के किनारे बना हुआ है। एक वामन मंदिर है, ये बीचों बीच में है एक खेत के। फिर जवारी मंदिर है जो लॉर्ड विष्णु को समर्पित है और उसके बाद आता है एक जैन कॉम्प्लेक्स। ये जैसे कि मैंने पहले अर्ज किया, जो बहुत अमीर जैन मर्चेंट से ये उनके द्वारा बनाया गया है और इसमें बहुत ही खूबसूरत नक्काशी की हुई है। सबसे बड़ा वहाँ का जो मंदिर है वो लॉर्ड पारशनाथ के नाम समर्पित है और 950 से 970 AD के बीच में राजा धंगदेव के काल में बना था। इसकी दीवारों के ऊपर बहुत ही खूबसूरत नक्काशी की हुई है। इसके जो दरवाजे हैं जिससे आप मंदिर में अंदर एंटर करते हैं, इसमें फूल पत्तियों के बहुत ही खूबसूरत नक्काशी है और इसमें जो विद्याधर फिगर्स होते हैं वो बहुत ही खूबसूरती से दर्शाए गए हैं। ये जैन मंदिर जो है ये लक्ष्मण टेम्पल से मिलते जुलते हैं और बहुत ही खूबसूरत सुर सुंदरी प्रतिमाएं हमको यहाँ मिलती हैं। अच्छा, यहाँ पे और जो मंदिर हैं वो लॉर्ड आदिनाथ को समर्पित हैं, लॉर्ड शांतिनाथ को समर्पित हैं और एक मंदिर है जिसको घंटाई मंदिर कहते हैं क्योंकि उसके चारों तरफ घंटियों की नक्काशी की हुई है। सदर्न ग्रुप की अगर हम बात करें तो वहाँ का जो सबसे मशहूर मंदिर है वो है दूलादेव। ये शिव मंदिर है और ये चंडेला राजाओं के द्वारा बनाया गया आखिरी मंदिर है और शायद 1130 के आसपास ये बनाया गया होगा। इस मंदिर को राजा मदन वर्मन ने बनाया था जो वहाँ के बहुत ही मशहूर राजा थे। इसका जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है वो थोड़ा सा फर्क है। यहाँ के कार्विंग्स जो हैं वो और नफीस हैं और उनमें काफ़ी जो है वो जेवर पहनते हैं और ताज भी है सर के ऊपर। इसका जो प्लान है उसमें यह है कि जो इनर सैंक्टम है वो लगता है कि इट हैज बीन बिल्ट बाय रोटेटिंग अ स्क्वायर ऑन इट्स सेंट्रल एक्सिस, जिस तरह से हमको ये डिस्क्रिप्शन मिलता है आर्किटेक्चर की किताबों में, और ये प्लान और किसी भी मंदिर में हमको नहीं मिलता। फिर चतुर्भुज मंदिर है जो कि जटकारी के नाम से भी जाना जाता है और थोड़ा सा अलग है इन मंदिरों से। इसमें भी गर्भगृह है, महामंडप है, अंतराल है और यहाँ पर शाम को जब सूरज ढलता है तो क्या खूबसूरत नज़ारा होता है। वैसे तो अब
वक्त कम है तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ के ऊपर आप जाएं तो 64 योगिनी का मंदिर भी जरूर देखिएगा, विजय मंडल देखिएगा, काकरा मठ मंदिर देखिएगा और सोचिएगा कि जिन हाथों ने इन्हें बनाया उनमें कितनी श्रद्धा थी। आज हम जाते हैं कितने आसानी से देखते हैं और क्या क्या हम इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन ये मंदिर जो है इनको जब आप देखें तो श्रद्धा से देखिएगा और सोचिएगा कि जिस तरह से बनाए गए, एक ह्यूमन स्पिरिट, एक इंसान का जो मोहब्बत का जज्बा होता है, जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी होती है, ये उसको समर्पित है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो हमें जरूर बताइएगा @htsmartcast पर ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक के जरिए। अगर आपको इस पॉडकास्ट पर इतिहास से जुड़ी कोई और कहानी सुननी हो तो आप मुझ तक पहुंच सकते हैं ट्विटर के जरिए @IamRana, इंस्टाग्राम पे @RanaSafi। और ऐसे और दिलचस्प पॉडकास्ट सुनने के लिए लॉग ऑन टू www.htsmartcast.com।
दिस वॉज एन HT Smartcast ओरिजिनल।
I'm Annie Apple and I'm here to invite you to come and listen to my new podcast series, Raising a Pro. It's the most intimate sports-related conversations you will hear. Each week, we explore the journeys of some of your favorite NFL players through the eyes of those that know them best. From Joe Burrow, DeAndre Hopkins, Myles Garrett, Ezekiel Elliott, Nick and Joey Bosa, just to name a few. With exclusive insights and information, we leave no stone unturned. Subscribe now to Raising a Pro on your favorite podcast app.